नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। भारत ने प्रस्तावित FCRA विधेयक पर अमेरिका के सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया। अमेरिका के सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक पारित किया। और कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक FCRA पर अमेरिका के एक सांसद की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देशों में भी विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
We have seen the comments.
हमने टिप्पणियां देखी हैं। ये देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका सहित कई देशों में विदेशी धन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए कानून लागू हैं।
Regulate the flow of foreign funds.
भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के संबंध में श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है।
पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र में हम स्थानीय नौवहन मंत्रालय और अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के आवाजाही और व्यापार के निर्बाध संचालन की मांग दोहराते रहे हैं। हम सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे लोगों के बुनियादी ढांचे और नागरिकों, खासकर वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने से बचें।
पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र के उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचा है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक रिपोर्ट।
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टुर्क ने अशांति के दौरान हुई सभी मौतों की जल्द, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की थी। इनमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बल दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चुनाव में कथित गड़बड़ियां और स्थानीय विधानसभा चुनाव में बाहरी लोगों के लिए सीटें आरक्षित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। खबरों के मुताबिक ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में हुए हाल के प्रदर्शन में करीब 50 लोगों की मौत हुई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर कल नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रस्तावित भारत श्रीलंका हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट इंटरकनेक्शन और संपूर्ण सौर ऊर्जा परियोजना समेत विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों देशों ने सीमा पार बिजली व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा, पारेषण बुनियादी ढांचा और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत और भूटान ने भी विद्युत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। केंद्रीय विद्युत और आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कल नई दिल्ली में भूटान के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री ल्योम्पो जेम शेरिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने चल रहे सहयोग की समीक्षा की और जल विद्युत विकास, सीमा पार विद्युत व्यापार, पारेषण संपर्क, नवीकरणीय ऊर्जा और क्षमता निर्माण पर बात की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिकी सेनेट ने रूस तथा चीन और अन्य देशों को दंडित करने संबंधी विधेयक को भारी मतों से पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि चीन और अन्य देश रूस से पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिल रही है। एक रिपोर्ट।
लिंडसे ओग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक के समर्थन में 86 और विरोध में 11 वोट पड़े। ये विधेयक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले 5 बड़े देशों पर 100% शुल्क लगाने की अनुमति देगा। विधेयक में ईरान पर प्रतिबंध संबंधी 1996 के अधिनियम को बढ़ाकर 2031 तक करने का भी प्रावधान किया गया है। 1996 के इस अधिनियम में ईरान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से फरहत नाज।
अमेरिका के रक्षा विभाग ने पूर्व वायुसेना सचिव फ्रैंक कैंडल की गोपनीय जानकारी तक पहुंच की अनुमति तत्काल प्रभाव से वापस ले ली है। उन्हें किसी भी संवेदनशील पद पर नियुक्त किए जाने से भी रोक दिया गया है। एयरफोर्स वन की क्षमताओं से जुड़ी गोपनीय जानकारी कथित तौर पर मीडिया के साथ साझा करने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कोटे डी आईवर के 66वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत इस अफ्रीकी देश के साथ अपने करीबी पुराने और दोस्ताना रिश्तों को बहुत महत्व देता है। उन्होंने कहा कि उनकी मौजूदगी से पता चलता है कि दोनों देशों के बीच दोस्ती और सद्भावना के रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं। कोटे डी आईवर 7 अगस्त 1960 में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन से आजाद हुआ था। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आपसी साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में प्रगति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। श्री नेतन्याहू ने कल श्री मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में ये बात कही। बृहस्पतिवार को टेलीफोन पर बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर चर्चा होगी। बैठक में संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और लोगों के बीच संपर्क मजबूत करने पर भी विचार किया जाएगा। बैठक के अंत में ब्रिक्स सांस्कृतिक मंत्रियों की घोषणा को अपनाया जाएगा। इसमें भविष्य में सांस्कृतिक सहयोग के लिए साझा दिशा और रोड मैप तय किया जाएगा। विदेशी मेहमानों को मध्य प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद भी मिलेगा। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने बंदूक नियंत्रण के लिए नए कानून लाने का वादा किया है। बैंकॉक के बाहरी इलाके में एक किशोर द्वारा की गई गोलीबारी में 8 लोगों की मौत और 22 लोगों के घायल होने के बाद ये फैसला किया गया है। एक रिपोर्ट।
14 वर्ष के इस किशोर ने पहले अपने घर में दादा दादी की हत्या की और फिर वो नोनथाबुरी के डेबिरसिरिन में अपने स्कूल गया। स्कूल में उसने 5 शिक्षकों की हत्या की और फिर खुदकुशी कर ली। बाद में एक घायल छात्र की भी मौत हो गई। हमले के बाद प्रधानमंत्री अनुतिन चरणवीराकुल ने कहा कि वो ऐसे कानून लाने की योजना बना रहे हैं जो सार्वजनिक जगहों पर हथियार ले जाने पर रोक लगाएंगे। नए कानून के अंतर्गत सिर्फ ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों को ही बंदूक रखने की अनुमति होगी। दक्षिण पूर्व एशिया में आम नागरिकों के पास बंदूक होने की दर थाईलैंड में सबसे अधिक है। यहाँ नागरिकों के पास लगभग 1.3 करोड़ हथियार हैं। माना जाता है कि इनमें से लगभग 40 लाख हथियार गैर कानूनी तरीके से रखे गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने होंगी। अश्मिता ने क्वार्टर फाइनल में जापान की नंबर 1 खिलाड़ी हिना अकेची को 3 गेम के रोमांचक मुकाबले में हराया। वहीं रक्षिता रामराज ने हमवतन और तीसरी वरीयता प्राप्त तन्वी शर्मा को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने प्रस्तावित FCRA विधेयक पर अमेरिका के सांसद की आपत्तियों को खारिज किया। विधेयक को देश का आंतरिक मामला बताया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की मौत के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग का समर्थन किया। अमेरिका के सेनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक पारित किया। और कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।